1900, Los Angeles, कैलिफोर्निया। स्वामी विवेकानंद का दिया हुआ एक प्रवचन, एक लेक्चर, जिसका नाम है पावर्स ऑफ द माइंड। उस क्लास में उन्होंने अपने जीवन की एक घटना का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि युवा अवस्था में हम लोग, कुछ मित्र, हमने सुना कि एक व्यक्ति है जो बहुत चमत्कार करता है, और हम चाहते थे कि हम उसको प्रत्यक्ष देखें, तो हम लोग गए और हमने अपने पास एक चिट पेपर पर एक एक प्रश्न लिखा, बहुत मुश्किल सा प्रश्न, ताकि भूल ना जाए उसके सामने जाके, ताकि वो सम्मोहन ना कर दे, इसके लिए पहले से ही प्रश्न लिख कर गए। और जैसे उसके सामने पहुंचे तो उसको हमने बताया कि हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं, तो बिना हम से उसे हमारे प्रश्न दिखाए उसने हमें जो हमारे चिट पेपर पर जो प्रश्न लिखा था वो बताया और उसका उत्तर दिया। पर हमको संतुष्टता नहीं हुई, हमने कहा कि अभी हम दूसरे प्रश्न पूछेंगे, और कुछ बताओ। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, 3 चिट पेपर लिए और उस पेपर पर कुछ लिखा, एक एक चिट पेपर को बंद किया और हम तीनों से कहा अब अपनी अपनी जेब में इसको रख दो, और फिर कहा अब आंखें बंद करो और कोई एक ऐसा प्रश्न सोचो जो बहुत कठिन है, जो आपके मन में आ रहा है, और फिर मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। कोई भी वाक्य सोचो। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैंने संस्कृत का बहुत ही कठिन सा एक श्लोक सोचा मन में, और फिर उस व्यक्ति ने कहा अब अपना चिट पेपर जो तुम्हारे पॉकेट में है उसको खोलो। उसको खोल के देखा तो उसमें वही लिखा हुआ था जो कि उसने पहले से ही लिख के रखा था। दूसरा जो मित्र होता है वो, और ये जो सामने वाला व्यक्ति है, बहुत कम संभावना होती है कि इसे संस्कृत पता है। दूसरा जो मित्र होता है वो लिखता है कुरान का एक वाक्य, आयत, जो कि अरबी भाषा में होता है। ये तो और ही कम संभावना है कि सामने वाला व्यक्ति इसको जाने। उसे भी कहते हैं कि अपना चिट पेपर निकालो, तो उसमें वही भाषा में वो आयत लिखी हुई है कुरान की। तीसरा जो व्यक्ति होता है मित्र, वो जर्मन मेडिकल कॉलेज का जर्मन भाषा में एक वाक्य लिखता है, जो कि डॉक्टर बन रहा होता है, जो जर्मन भाषा का, जर्मन मेडिकल बुक की जर्मन भाषा का एक वाक्य लिखता है। उसे भी कहता है वो अपना चिट पेपर खोलो, तो इस व्यक्ति ने वो वाक्य पहले से ही वहां लिख के रखा था। तो स्वामी विवेकानंद ने लिखा, कहा भाषण में, कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सिद्ध कहा जाता है, और इस तरह के हजारों प्रयोग करने वाले भारत में है विद्यमान। ऐसी ऐसी शक्तियां उनके पास है, ऐसी ऐसी पावर्स उनके पास है। इन शक्तियों को कहा जाता है साइकिक पावर्स। हिंदी में, संस्कृत में इन्हें सिद्धि कहा जाता है। ऐसी तो 8 सिद्धियां है, पर बहुत सारी सिद्धियां है, 64 सिद्धियों का वर्णन है। आकाश में चलना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, परकाया प्रवेश करना, जो शंकराचार्य ने कभी किया था, अहिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्य, अकाम्य, इषित्व, वशित्व, 8 शक्तियां है। जो चाहिए वह सामने आ जाना, जो चाहिए उसको वश में कर लेना, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, भारी हो जाना, हल्का हो जाना, लघिमा, महिमा, गरिमा, ये सारी सिद्धियां है। और ये सारी सिद्धियां बताती है कि मन जो है कैसा है, बहुत शक्तिशाली है। मन की शक्तियां अपार है, इतना शक्तिशाली है कि कुछ भी किया जा सकता है इस मन के द्वारा। बिना कहीं जाए दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो जाना जा सकता है। एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको कहते हैं साइकिक पावर्स। साइकिक पावर्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। ऑरा रीडिंग, किसी का क्या ऑरा है वो पढ़ लेना। ऑटोमेटिक राइटिंग, बिना कलम के लिखना। बायलोकेशन, एक ही जगह एक ही व्यक्ति दो स्थानों पर विद्यमान, इधर भी वो तो उधर भी वो, ऐसा हुआ है ऐसा दिखाया हुआ है। क्लायर ऑडियंस, यहां बैठा है व्यक्ति, वहां क्या हो रहा है वो सुन रहा है। क्लायर वॉयंस, वहां क्या हो रहा है वो देख रहा है। कॉन्जुगरेशन, वस्तुओं को लाना, फूल को पैदा कर देना, फूल आ गया हाथ में, फल आ गया कोई, ये सब क्या है, मन की शक्तियों से सब कुछ हो रहा है। डिवाइनेशन, इलेक्ट्रोकाइनेसिस, इलेक्ट्रिसिटी को मन से कंट्रोल करना। एनर्जी मेडिसिन, लेविटेशन, आकाश में उड़ना, ये भी एक शक्ति है। साधुओं को दिखाया ना ऊपर उड़ जाते हैं, उसमें ढोंगी भी बहुत होते हैं। एक योगी था, जंगल में अकेला तपस्या करता था, दिन रात तपस्या करते 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 उसमें ऐसी सिद्धियां प्रकट होने लगी कि एक दिन उसने देखा कि मैं तो हवा में भी उड़ सकता हूं। पर वो अकेला जंगल में रहता था, किसको दिखता नहीं था, पर अंदर से थोड़ी सी इच्छा भी तो होती है कि दूसरों को भी तो पता चले कि मैं भी आकाश में उड़ सकता हूं। एक दो को दिखाया तो ढेर के ढोर ढेर आ गए उसके पास कि हमको भी देखना है कैसे उड़ते हो। और वो दिखाने लगा कि मैं इस तरह आकाश में, लेविटेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, लेविटेशन की शक्ति मुझ में आ गई है, लेविटेशन पावर, आकाश में व्यक्ति उड़ जाता है और उड़ता है। खबर राजा तक पहुंच गई, राजा आ गए, कहते हैं हमने सुना है आप उड़ सकते हो। उसने कहा हाँ, हमारे महल में चलो, आप जैसे व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है, आपका सब कुछ किया जाएगा, आप अपनी साधना भी करो, कुटिया बना के रहो महल में, महल के कहां भोजन व्यवस्था हम करेंगे, और राज्य कारोबार में मुझे अगर कुछ परामर्श की आवश्यकता है वो भी आप देना। आइडिया वॉज नॉट बैड, योगी को लगा वैसे भी तो यहां भटकना पड़ता है, भीख मांगने जाना पड़ता है, बैठे बैठे भोजन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो राजमहल के प्रसाद में आ जाता है वो, और वहां बैठकर चैन सुख से अपना जीवन व्यतीत करता है। राजा भी कहता है कि आज मुझे देखना है कैसे उड़ते हो, उड़ के भी दिखाता है ऐसे, और सब कुछ अपने आप उसको मिलने लगता है। साधना भी चालू है अपनी, उड़ना भी चालू है, और राजा को परामर्श भी देते रहता है, और भोजन उसको जो देने आती है वो राजकुमारी देने आती है रोज। और एक दिन राजकुमारी को देख ही लेता है, अ मोमेंट ऑफ लस्ट एंड ही फेल डाउन, एक वासना का क्षण और सारी सिद्धियां समाप्त। उस दिन से उड़ना बंद हो जाता है, ऐसी शास्त्रों में कहानियां सुनाते हैं। तो मन की शक्ति अपार है, मन बहुत कुछ कर सकता है। प्रोफेसी, भविष्यवाणी कर लेना, भविष्य में क्या होने वाला है पहले बता देना। साइकिक सर्जरी, बिना पेशेंट को हाथ लगाए ऑपरेशन कर देना। आशीष भाई, पेशेंट को हाथ लगाया नहीं, बिना ऑपरेशन कैसे करना, साइकिक सर्जरी, मन से ऑपरेशन कर देना उसका। साइकोकाइनेसिस, वस्तु इधर है उसको मोड़ देना, चम्मच है वो मुड़ गया बिना हाथ लगाए, केवल उस पर एकाग्र किया और वो मुड़ने लगा। साइकोमेट्री, एक व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेना, सामने आके बैठा, अच्छा तुमको ये समस्या है, उसने बताई नहीं, पहले ही पता कर लिया। साइकोकाइनेसिस, आंख को अपने मन से कंट्रोल करना, रिमोट व्यूइंग, दूर की चीजों को देखना, रेट्रोकॉग्निशन, पास्ट में जो घटनाएं हुई है उनको देख लेना पूर्व जन्म की, सेकंड साइट, टेलीपैथी, थॉटोग्राफी, प्रीकॉग्निशन, ये सारी अलग अलग सिद्धियां है, साइकिक पावर्स की लिस्ट है ये सारी। स्मेल, चीज है नहीं यहां पर, टेस्ट कर लेना पर उसका, गुलाब जामुन सोचा और टेस्ट आ गई, है नहीं वो। क्लायर गस्टन्स, बिना टच किए उसका टेस्ट करना, ये लिस्ट है बहुत बड़ी। इसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लेना, या वस्तुओं को गायब कर देना, या वस्तुओं को लाना, या इधर की वस्तु उधर कर देना, इसके जेब में मोबाइल है वहां से गायब कर उसके जेब में डाल देना। इसको कहते हैं साइकिक पावर्स। संडे की अव्यक्त मुरली मनसा शक्ति के ऊपर है। मन में बहुत शक्ति है, मन में बहुत पावर है। तो सबसे पहले तो कौन किसको देख रहा है, कल की मुरली, शक्ति सेना का कमांडर, कमांड शब्द तो नहीं आया है पर कमांडर ही है वो कमांडर अपनी सेना को देख रहा है। और क्या देख रहा है, सेना में कितने महावीर है और कितने विजयी बने हैं, और सब में सारी शक्तियां है। तीन प्रकार की शक्तियों का वर्णन किया, मन की शक्ति, वाचा की शक्ति और कर्मणा की शक्ति। तीनों ही शक्तियां कैसे है, यथाशक्ति और नंबरवार, ये दो नए शब्द है जो बाबा ने मुरलियों में यूज किए है, यथाशक्ति और नंबरवार। एक है विश्व सेवाधारी बनना, एक है सेवाधारी। सेवाधारी होगा वो यथाशक्ति और नंबरवार होगा, और जो विश्व सेवाधारी होगा उसमें सारी शक्तियां होगी, और जो विश्व सेवाधारी होगा वो विश्व महाराजन, और जो सेवाधारी होगा वो राजन। तो बाप दादा देखते हैं किसने कितनी शक्तियां धारण की है, कौन विजयी रत्न है। विजयी रत्न अर्थात जिसके पास तीनों ही शक्तियां है। मुरली है 28 जनवरी 85 की। तो तीनों ही शक्तियां हमने कितनी धारण की है, मन की शक्तियां कितनी है, वाचा हमने अपनी कितनी पावरफुल बनाई है, स्पीच कितना पावरफुल बनाया है, और कर्मना, कर्म कितने शक्तिशाली है। ये तीनों ही एक साथ होने चाहिए, वाचा कर्मना मनसा, ये तीनों ही शक्तियां कितनी अपने अंदर धारण की है। तो मन को पावरफुल बनाना है, स्पीच को भी पावरफुल बनाना है, और कर्म को भी पावरफुल। पर कर्म और स्पीच को पावरफुल बनाने का आधार मन, जहां मन शक्तिशाली है अपने आप वाचा भी शक्तिशाली होगी और कर्म भी शक्तिशाली होंगे। कोई सोचे मन को छोड़ दो केवल वाचा को ठीक करता हूं या कर्म को शक्तिशाली बनाता हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। किसको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, माइंड को। मन शक्तिशाली बन गया तो अपने आप सब कुछ शक्तिशाली बन जाएगा। इतिहास में उदाहरण है कैरोकी का, कैरोली, कैरोली नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत प्रसिद्ध पिस्टोल शूटर था, पिस्टोल से शूट करता था, और 1938 में एक ऐसा हादसा हो गया, ग्रेनेड इंजरी में उसका हाथ डैमेज हो गया, पर उसकी अदम्य इच्छा शक्ति थी कि मुझे कैसे भी करके ये ओलंपिक जीतना ही है। उसने लेफ्ट हैंड से, जिसने कभी उसने लिखा भी नहीं था लेफ्ट हैंड से, उससे प्रैक्टिस करना चालू कर दिया कैरोली टकास ने, और अपने आप को इतना ताकत शक्तिशाली बनाया कि 1939 में जो हंगेरियन पिस्टोल शूटिंग नेशनल गेम्स हुए उसमें वो जीत गया। अब उसका लक्ष्य था ओलंपिक्स में जाना, और ओलंपिक्स होने वाली थी 1940 में। बहुत तैयार किया अपने आप को, एक साल तक दिन रात प्रैक्टिस की लेफ्ट हैंड से पिस्टोल शूटिंग के लिए, जिसकी उसको इतनी आदत नहीं थी, परंतु फिर भी दिन रात लगा रहा। पर 1940s में वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू हो गया, पोस्टपोन हो गए ओलंपिक्स, फिर तैयारी की चार साल। 1944 में नेक्स्ट ओलंपिक था, बहुत तैयारी की, पर फिर से वर्ल्ड वॉर अभी तक पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध चालू करना मनुष्य के हाथ में है, रोकना किसी के भी हाथ में नहीं है, कोई रोक नहीं सकता उसको। एक बार युद्ध चालू हो गया, रोक चालू तो कर दिया आज, रुकेगा कब कोई बता सकता है? जितने चालू किया वो भी सोचे अब रोक दो, फिर भी नहीं रोका जाता है। इसलिए तो युद्ध की सबसे बड़ी डिफेक्ट यही है कि उसको रोकना किसी के भी वश में नहीं है बाद में। तो 1944 में अभी भी चालू है, तो फिर से ओलंपिक कैंसिल हो गया। फिर भी वो प्रैक्टिस करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, और अंत तो 1948 में लंदन में पिस्टल शूटिंग ओलंपिक्स में वो फर्स्ट आया। एक ही हाथ से अपना प्रैक्टिस करता रहा, वो भी लेफ्ट हैंड से, जो उसका डोमिनेंट हैंड नहीं है। ना केवल पहली बार ओलंपिक जीता, उसके बाद 1954 में सेकंड ओलंपिक्स हुए, उसमें भी वो जीता। ये एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है उस समय का कि जिसने दो बार ओलंपिक जीता, कैरली। ये सब कहां से हुआ? मन और उसकी शक्ति, मन के संकल्प इतने शक्तिशाली थे कि हाँ, एक दूसरा होता तो सोचता था एक हाथ तो गया, अब क्या करना है, चलो अब दूसरा ऑल्टरनेटिव करियर, कोई दूसरा जॉब ढूंढ लेता हूं किसी ऑफिस में, ये स्पोर्ट्स बिट्स तो अपने बस की बात नहीं रही अब। और करे भी तो जीतने वाले फर्स्ट थोड़ी ना आएंगे सेकंड लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करके। पर यादम में इच्छा शक्ति, विल पावर, मन और मन की शक्ति। तो जहां मन शक्तिशाली है वहां पर अपने आप वाचा भी शक्तिशाली होगी और कर्म उसी अनुसार होंगे। इसके लिए कल रात की क्लास में कहा था, मन कर्म के आधार है और पहला आधार है संकल्प, इच्छा, भावना, ये सब आधार है कर्म के। लक्ष्य आधार है कर्म का, हिसाब किताब आधार है कर्म के, दृष्टिवृत्ति आधार है कर्म के, इस आधार से कर्म होते हैं। तो बाबा ने कहा मनसा सेवा, मनसा सेवा से 10 फायदे गिनाए। पहले आप बताएंगे फिर हम बताएंगे, बोलो क्या क्या बोला? मनसा सेवा से 10 फायदे, 10 फायदे और 5 क्वालिफिकेशंस। जो मनसा सेवा कर सकता है उसमें 5 चीजें होनी चाहिए, और मनसा सेवा के 10 फायदे, और मनसा सेवा कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं, इसकी एक लाइन बीच में आ गई है। और मनसा सेवा अभी तीव्र करो, क्यों क्यों तीव्र करो? बहुत लोग कितने 9 लाख सितारों का गायन है, कहां गायन है ये? सतयुग में नहीं, 9 लगाहार नहीं बोला, 9 लाख सितारों बोले बाबा ने। इसके लिए उनको उन तक पहुंचना पड़ेगा। वास्तव में सितारे कितने हैं आकाश में? 10^21 इतने सितारे हैं। 10 के आगे 21 जीरो लगाओ, उतने सितारे आकाश में है, ऐसा कैलकुलेशन है। पर बाबा ने कहा गायन है 9 लाख सितारों का, इसके लिए कम से कम 9 लाख तो तैयार करो, और वो 9 लाख के बाद तुम खुद थोड़ी पहुंचोगे, तुम्हारे विचार संकल्प वाइब्रेशंस पहुंचेगे। इसके लिए मनसा सेवा को अब तीव्र करो। तो मनसा सेवा के 10 फायदे गिनाए। आशीष भाई चालू करो। एक और, ओके, दूर को सम्मुख और हलचल को समाप्त, पीछे से वैसे बहुत है, कल की मुरली में क्या था वो बताना है बस, इधर उधर का बताएंगे तो 100 निकाल लेंगे हम तो। कल जो था भावनात्मक बुद्धि, और प्रभाकर भाई, विठल भाई, निखिलेश भाई, चिमन भाई जी, मंजू बहन, व्यर्थ को समर्थ, और हाँ स्वभाव को बदल सकते, कमलेश भाई उधर नहीं बंद करो, पूजा बहन, हाँ वो बोल दिया। और कल की मुरली में जो था वो बता, भगवान के नजदीक। और शाहू भाई मनसा सेवा क्या क्या करती है, बदल किसी के भाग्य की रेखा बदल सकते। और दूर होती आत्मा को अनुभव करा सकते। तो ये ऐसे 10 गिनाए हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, पहले दूसरी चीज लेते हैं। 3 चीजों से कंपैरिजन किया, उदाहरण 3 चीजों का दिया मनसा सेवा के लिए। सबसे पहले मनसा सेवा रूहानी वायरलेस सेट है। दूसरा मनसा सेवा, जैसे वो अंतरिक्ष यान है वैसा ये अंतर्मुखी यान है। तीसरा फ्लाइंग सॉसर, उसको UFO कहा जाता है, अभी फ्लाइंग सॉसर नहीं कहा जाता है उसे, 1959 के बाद उसका नाम बदल चुका है, अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मनसा सेवा क्या है, रूहानी वायरलेस सेट है, स्पिरिचुअल वायरलेस सेट। क्या करता है ये स्पिरिचुअल वायरलेस सेट, जो दूर की आत्मा है, जो दूर बैठी है, उसके अंदर उमंग उत्साह उत्पन्न होता है। जो दूर आत्मा है, दूर का संबंध है वो नजदीक का संबंध उत्पन्न होता है, उसको प्रेरणाएं आती है, महान शक्तियां पुकार रही है, अनमोल प्रेरणाएं प्रेर रही है, और जैसे सम्मुख आवाज आ रही है दूर से उसको लगता है, उसके पास हम गए ही नहीं पर उसको लगता है उसके सम्मुख है, उसको हमने कुछ बोला ही नहीं पर उसको आवाजें आ रही है, उसको हमने कुछ कहा ही नहीं उसको महान प्रेरणाएं आ रही है, किससे, मनसा शक्ति से। तो मनसा सेवा क्या है, रूहानी वायरलेस सेट है। एक ही स्थान पर बैठे बैठे शक्तियां फैलाना, आह्वान करना आत्माओं को, आ जाओ, उनको वहीं लगेगा कि कोई मुझे महान शक्ति प्रेर रही है, अनमोल प्रेरणाएं प्रेर रही है, ऐसा अनुभव होगा मनसा शक्ति से। इसके लिए मनसा सेवा करने के लिए इतनी एकाग्रता चाहिए, और यह सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं है। सारा फोकस तो अभी इसी सेवा पर होना चाहिए। यज्ञ में स्थूल सेवाधारियों से ज्यादा किन सेवाधारियों की आवश्यकता है, सूक्ष्म और मनसा सेवाधारियों की आवश्यकता है, जो अपनी शक्तिशाली मनसा से सेवा करते हैं, और ये सेवा सबसे गुप्त है, एकदम सूक्ष्म है, जहां मन मन से बात कर रहा है, मन मन को आह्वान कर रहा है। ये इतने गहरे तल पर हो रही है सेवा कि इसका पता ही नहीं चल रहा है, पर वास्तव में यही सेवा है। तो ये सबसे पहला। दूसरा अंतरिक्ष यान, जैसे वो यान होता है, वो यान आकाश में जाता है तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, सूक्ष्म शक्तिशाली होता है, उसी तरह ये अंतर्मुक्ता का यान है मनसा सेवा, ये भी सबसे शक्तिशाली है। दो उदाहरण दिए यहां पर, दो बातें बताई, जैसे वो अंतरिक्ष में जाता है हल्का हो जाता है लाइट, वैसे तुम लाइट स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाते, जैसे वो ऊपर जाता है तो फोटो खींच सकता है, चित्र खींच सकता है, तुम यहां आत्माओं को चरित्रवान बना सकते हो, आत्माओं में पवित्रता का बल भरा जा सकता है, आत्माओं को प्रेरित किया जा सकता है, जो विकारों की गर्त में डूबे हुए उनके अंदर ब्रह्मचर्य स्थापित किया जा सकता है। ऐसी पावर किसमें है, मनसा सेवा में। मैं आत्मा मुझसे पवित्रता की किरणें जा रही है, आत्माओं के दर्द को कम किया जा सकता है। अगर ये आत्मा है, ऐसे इमेजिन करना, यह आत्मा है, बड़ी आत्मा देखना, इतनी बड़ी है, छोटी ना देखना, बड़ी। अब इस आत्मा में घाव है बहुत सारे, हर्ट है, वुंड है, दर्द है, काले काले धब्बे है। मैं आत्मा पवित्रता की किरणें, हीलिंग पावर सबसे ज्यादा किसमें आशीष भाई, हीलिंग पावर सबसे ज्यादा, हीलिंग पावर प्यूरिटी में है, जितनी हीलिंग पावर प्यूरिटी में और किसी में भी नहीं है। मुझ आत्मा से पवित्रता की हीलिंग एनर्जी जा रही है, एक एक दाग, एक एक घाव, अपमान का, दर्द का, दुख का, सब आत्मा में है, एक एक को हील करते जा रही हूं, और आत्माएं स्वस्थ हो रही है, दुरुस्त हो रही है, तंदुरुस्त हो रही है, निरोग हो रही है, उस निरोग की अवस्था को पा रही है, जन जन की रुग्ण है चेतना, ये सारे दाग समाप्त हो रहे हैं, और मेरी हीलिंग एनर्जी उस आत्मा तक जा रही है, प्यूरिटी की पावर। और जैसे कहा उस कहानी में, वो सारी शक्तियां उसकी नष्ट हो गई जैसे ही अपवित्रता आ गई मन में, उड़ने की पावर चली गई, क्रैश लैंडिंग करना पड़ा उसको। साधु से स्वादु, तो अंतरिक्ष यान है, अंतर्मुखी यान है। तीसरा, मनसा सेवा क्या करती है? फ्लाइंग सॉसर है, यूएफओ। यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। बाबा ने कहा जो कभी कभी तुम सुनते हो उसका समाचार, एलियंस आए वो अपने ये अंतरिक्ष फ्लाइंग सॉसर में बैठ के, ऐसा होता नहीं होता पता नहीं। बाबा ने कहा एक समय आएगा जब आत्माओं को लाइट का साक्षात्कार होगा, पूछेंगे ये कौन है, ये कहां से आए, ये कैसे है। वो हम होंगे जो उनको दिखेंगे फ्लाइंग सॉसर माफिक। तो ये किससे होगा? मनसा सेवा से। तो ये तीन कंपैरिजन दिए, बड़ा ही साइंटिफिक मूड है बाबा का, साइंटिस्ट के जैसे भाषा में बाबा ने बात की, स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट। ये 85 की मुरली है। तो मनसा सेवा रूहानी वायरलेस सेट है, मनसा सेवा अंतरिक्ष यान है, अंतर्मुखी यान है, मनसा सेवा फ्लाइंग सॉसर है। सॉसर मतलब प्लेट जिसमें चाय पीते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? उड़न तस्करी। हिंदी में क्या कहते हैं? वो तो मराठी में कहते हैं बशी। तस्करी आप लोग क्या कहते हो? चाय। अरे वुडन कटोला नहीं, चाय पीते जिसमें, उसको क्या कहते हैं? प्लेट। ऐसी प्लेट तो बड़ी होती है, कटोरी। कटोरी तो ऐसी होती है, हाँ, रकाबी। तस्तरी, तस्तरी। सब अपनी अपनी भाषा बता रहे हैं। तो ये तीन चीजों के साथ कंपैरिजन किया है मनसा सेवा का। अब मनसा सेवा के 10 फायदे गिनाए बाबा ने। सबसे पहला फायदा, कोई भी दूर जो आत्मा है उसको समीप संबंध में ला सकते हो मनसा सेवा से। क्या कर सकते हो? जो दूर वाली आत्मा है अपनी शुभ भावना शुभ कामना से उस आत्मा को समीप का अनुभव करा सकते हो। उसके पास पहुंचे ही नहीं, उसके पास हम गए ही नहीं, उसके पास उसे कुछ बोला ही नहीं, परंतु उसको अनुभव हो रहा है यहां। वो जैसे अलिफ लैला में दिखाया था ना, वो जादुई चटई होती है, तो ऐसे चटई लेके जाना सुशील भाई, आत्माओं को बिठाना और चटई के साथ मधुबन आ जाना और उनको चार धाम की यात्रा करा देना आत्माओं को। तब तक चटई अपने आंगन में रखना, तब तक वो जाके आए, फिर वापस बिठा के वापस पहुंचा के आना। सुबह उठेंगे तो कहेंगे अरे हमने कुछ स्वप्न देखा था, चटई में बैठ के हम कहीं जा रहे थे आकाश मार्ग से और कहीं तीर्थ स्थान की किसी यात्रा करके आ गए। फिर ढूंढने गएंगे कौन था वो, कौन था वो, फिर आएंगे सुशील भाई के पास, हाँ यही है वो, यही था वो जो हमको लेके आया था, और पीछे पड़ जाएंगे फिर से वो चटई से हमें जाना है। तो आत्माओं को समीप का अनुभव कराना, हम उनके पास गए ही नहीं, यहीं बैठे बैठे। जैसे वो एक योगी था ना जिसके बारे में बताया था, हिमालय पर बैठकर तपस्या करता था अकेला एकांत में। एक विदेशी यात्री को पता चला ऐसा एक महान योगी है हिमालय पर, गया वो उसके पास, देखा यहां तो खाने पीने का भी कुछ नहीं, केवल बर्फ ही बर्फ, जीते कैसे हो, रहते कैसे हो इतने सालों से। वो कहता ये सब अपने आप होता है, हवा योगी, सूर्य योगी, सूर्य की किरणों से ही शरीर को चलाते हैं। वो कहता है आप हमारे अमेरिका में चलो, अमेरिका में जाओगे ना तो बहुत सेवा हो जाएगी। वो कहता है जो यहां बैठ के मैं आपके अमेरिका की सेवा कर रहा हूं ना, वहां जाके नहीं कर पाऊंगा, यहीं बैठे बैठे मैं अमेरिका की सेवा कर रहा हूं। तब तो ये आया। तो सबसे पहला फायदा, दूर वालों को समीप का अनुभव। दूसरा, हलचल में जो है उनको हचल, हलचल स्थिति वालों को अचल कर सकते हैं, जो बोल बिल्कुल हिल रहे हैं, बोल बिल्कुल डगमग हो रहे हैं, जिनके मन में द्वंद चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं, इतनी हलचल है, इतनी हलचल, एक पल के लिए शांत नहीं बैठते, ऐसी आत्माओं को कहो बैठ के योग करो तो हाथ पैर हिलाएंगे, उंगलियां हिलाएंगे, हाथ हिलाएंगे, कुछ खुजली करेंगे, कुछ तो करेंगे, बहुत हलचल में। ये तो शरीर, शरीर की हलचल दिखाती है, मन भी हलचल में। तो ऐसी हलचल वाली आत्माओं को स्थिरता की किरणें पहुंचानी है, ताकि वो अचल हो जाए। तीसरा, जो संशयात्मक है उनको भावनात्मक बना देना। संशयात्मक बुद्धि, जिसके मन में संशय ही संशय, इतने संशय है, हर चीज के बारे में संशय करते हैं, माइंड डाउट से भरा हुआ है, क्योंकि बाहर का भी बहुत देखा है संसार, अचानक इस ज्ञान को पहचाना मुश्किल है। ड्रामा एक्यूरेट है, जो हो रहा है वही होना चाहिए, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, भगवान को भी पसंद है, और संसार में करप्शन और संसार में सब गलत हो रहा है, ये सब भगवान को पसंद है? कैसे भगवान ही है? हजार प्रश्न है मन में, संशय ही संशय है, हर चीज के बारे में संशय भरा हुआ है। डाउटिंग माइंड, डाउटिंग थॉमसिस, बाइबल में इन व्यक्तियों को कहा है डाउटिंग थॉमसिस। जीसस क्राइस्ट के 12 शिष्यों में एक शिष्य था थॉमस। जीसस क्राइस्ट को सूली लगती है, तीसरे दिन वो फिर वापस आता है, उसके शिष्य बैठे हुए दुखी होते रहते हैं, सोचते रहते हैं छुप के अब क्या करे, हमारा तो गुरु जी तो गए, अब क्या करना है। तो अचानक दरवाजे से वो आ जाता है, वो सारे शिष्य उसको हाथ लगाते हैं, वो आप वापस आ गए, बहुत खुश होते हैं। जीसस चला जाता है। थोड़ी देर के बाद थॉमस वहां नहीं रहता, वो बाहर गया होता है कहीं, वो आता है, बाकी मित्र उसको कहते हैं कि जीसस आया था, अब लॉर्ड हैड कम। वो कहता है ऐसे कैसे आ सकता, मैं नहीं मानूंगा, मैं कैसे मानू। वो कहता है जब तक मैं उसको हाथ नहीं लगाता, और उसको तो सूली लगी थी यहां पर, जब तक वो मैं देख नहीं लेता मैं नहीं मानूंगा। कुछ दिनों के बाद जीसस क्राइस्ट अचानक आ जाते हैं, वो लोग बैठे होते हैं, जीसस क्राइस्ट अपने आप आ जाते हैं और थॉमस को कहते हैं ये देख, ये मेरे हाथ है और यहां मुझे सूली लगी। और वो आता है और रोने लगता है, और जीसस क्राइस्ट उससे कहता है कि ये बहुत आसान है किसी को देखा और मानना, पर असली परीक्षा तो वो है कि देखा ही नहीं फिर भी मानना। ये है फिथ, ये है विश्वास, ये है श्रद्धा, ये है निश्चय कि जो तुमने देखा ही नहीं फिर भी मानना। ब्रह्मा को साक्षात्कार हो गया, उसने मान लिया, ये बहुत आसान है। तुमको साक्षात्कार हुआ ही नहीं फिर भी मानना, जैसे मम्मा, वो है निश्चय। ब्रह्मा जैसा बनना तो आसान है, हमको भी साक्षात्कार करा हम भी मान लेंगे। अभी का साक्षात्कार करा दो सतयुग का, परम धाम का, विनाश का, देखना फिर कैसे पुरुषार्थ करता हूं, ईट से ईट बजा दूंगा, ऐसा पुरुषार्थ करूंगा। एक बार स्वर्ग का साक्षात्कार तो कराओ, देखने तो मुझे कैसा पवित्रता है वहां की, फिर देखना ये सब एकदम ही छोड़ दूंगा। तो उस कहानी के आधार से क्रिश्चियनिटी में फिर वो शब्द निकला डाउटिंग थॉमस। जो व्यक्ति ज्यादा ही प्रश्न विश्न पूछता है उसको कहते हैं डाउटिंग थॉमसेस। तो मनसा शक्ति से क्या कर सकते हो, जो डाउटफुल वाले हैं उनको भावनात्मक बना सकते हो, निश्चय बुद्धि बना सकते, भावना भर सकते। चौथा, जो व्यर्थ है उसको क्या कर सकते हो, समर्थ भाव में परिवर्तित कर सकते हो। पांचवा, किसी का स्वभाव ही बदल सकते हो, स्वभाव बदल सकते हो, यह असंभव कार्य है संसार में। व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता है, बाकी सब बदल जाता है। पूछ तो टेढ़ी रहेगी, सब बदल रहा है पर ये नहीं बदलता। ज्ञान तुम्हारा बहुत अच्छा है पर नाला वही रहेगा। पंचों की सभा में जगदीश भाई की किताब में है ना, ये भाई परनाला यहां से बह रहा है, इसको हटाओ। उसको सब पंच बैठते हैं, सारा उनको समझाते हैं, सब कुछ हो गया, पंचायत बैठी, पर परनाला वही रहेगा। पंचों की बातें सिर माते परनाला वही रहेगा। तो किसी का स्वभाव ही बदल सकते हो। किसी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, वो बदल सकते हो। उसके बाद में भावना का फल देख सकते हो। छठवा, किसी भी आत्मा को भावना का फल दे सकते हो। सातवा, भगवान के नजदीक ला सकते हो मनसा सेवा से। आत्माएं भगवान से इतनी दूर जा चुकी है कि भगवान ये सब शब्द उनको बिल्कुल, जैसे उन लोगों के लिए बूढ़े बड़े लोग होते हैं ना जो धर्म वाले, उनके है ये, हमको मॉडर्न लोग हैं हम तो, ये हमारे कुछ काम। भगवान का आश्रय वो लोग लेते हैं जो कमजोर होते हैं, हम तो खुद ही इतने शक्तिशाली है, अपनी इच्छा शक्ति से सब कुछ करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ये भगवान के नाम पर जो बैठे रहते हैं वो पाखंडी है सब। जैसे निष्काम कर्मयोग, इसका बड़ा विरोध हुआ है, कुछ कुछ लोग हैं जिसने निष्काम कर्मयोग का विरोध किया, वो कहते हैं कर्म करने के लिए बहुत इच्छा चाहिए अच्छी पावरफुल, ये निष्काम कर्मयोग मतलब इच्छा ही नहीं है कोई, और कर्म किए जा रहे हो डिटैच होकर। उदाहरण दिया है, एक किताब हमने खरीदी और उस किताब में 2-3 पेज ही नहीं है, और पब्लिश करने वाले कहते हैं हमारा निष्काम कर्मयोग है, उसको ठीक भी नहीं कर रहे, हमने काम कर्म कर लिया, अब परिणाम जो होगा वो हो गया। किताब पब्लिश कर ली, उसमें इतनी बारीक प्रिंट है कि पढ़ने भी नहीं आता है, पब्लिशर कहता है प्रिंट वाला कि हमारा निष्काम कर्म ही हो गए, हमने प्रिंट कर दी, अब उसका परिणाम से हमको कोई लेना देना नहीं, एक उल्टा इंटरप्रिटेशन, उल्टी गंगा बहा है श्रीमत की, हमको कुछ करना नहीं, हमने तो कर्म कर लिया। गीता कहती है कर्म कर लो, कर्म के परिणाम से दूर, यह तो गलत भी अर्थ लिया है लोगों ने निष्काम कर्मयोग का, इसके लिए बहुत विरोध भी किया है कई लोगों ने, जो साइंस वाले लोग हैं वो विरोध करते हैं निष्काम कर्म, वो कहते नहीं कर्म के लिए बर्निंग डिजायर चाहिए, फर्स्ट आना है ना तो फर्स्ट के लिए तुमको बहुत इच्छा करनी पड़ेगी कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है। व्यक्ति अध्यात्म में घुसता है इच्छा ही कम हो जाती है उसकी, क्या करना है भगवान कुछ सौंप दो या तो सर वो गलत है। तो सातवां भगवान के समीप ला सकते, आठवां किसी के भाग्य की रेखा बदल सकते हो, किसी के भाग्य की रेखा ही बदल सकते हो कर मनसा सेवा से। नौवां हिम्मतहीन को हिम्मतवान बना सकते हो, और दसवां शुभ भावना शुभ कामना ये विधि है मनसा सेवा की। मनसा सेवा किससे करनी है, शुभ भावना शुभ कामना की विधि से मनसा सेवा की जा सकती है। तो ऐसी ये 10 बातें हैं जो किससे होगी, धन से, और ये 10 के 10 बातें रोज ही याद करना है अमृत वेला प्रयोग के रूप में। आत्माओं को इमर्ज करना, दूर वाली आत्माओं को समीप लाना, हलचल वाली आत्माओं को अचल बनाना, निश्चय बुद्धि आत्माओं को भावनात्मक बनाना, व्यर्थ वाली आत्माओं को समर्थ बनाना, आत्माओं के स्वभाव को बदलना, आत्माओं को अपने भावना का फल देना, आत्माओं को भगवान के समीप लाना, आत्माओं को उनके भाग्य की रेखा बदलना, हिम्मतहीन को शक्तिहीन बनाना, शक्तिशाली बनाना, और शुभ भावना शुभ कामना ये विधि है मनसा सेवा की। तो हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, चाहे जिसने जो भी किया हो जैसा भी हो, बहुत निगेटिविटी है उसमें, इतनी निगेटिविटी है कि उसके सामने भी जाओ तो वो प्रभाव आता है निगेटिविटी, ऐसी आत्माओं के प्रति भी गरम गरम हवा ऐसी है, जैसे उसका स्वभाव वो नहीं छोड़ता। वो संत के बारे में बताया ना, वो बिच्छू गिर रहा है उसको लेता है काटता है फिर छोड़ता है फिर लेता है, व्यक्ति पूछता है क्या कर रहे हो, वो कहता है उसका स्वभाव है काटना, मेरा स्वभाव है बचाना, चाहे दूसरे जो करना है करने दो, हम अपना स्वभाव क्यों छोड़े, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, हम अपना क्यों छोड़े। मनसा सेवा से ये तो इतनी बातें कही, इसमें और एडिशन कर सकते हैं, जो होपलेस है उसको होप, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार, और बताओ जो विघ्न में है वो उसको विघ्न रहित कर देना, जिसके पास हिम्मत की टांग नहीं है उसको हिम्मत की टांग दे देना, जिसके पास आंख नहीं है उसको तीसरा नेत्र दे देना, जो सुन नहीं सकता उसको ऐसा दिव्य कर्ण देने दे देना जो भगवान की वाणी को सुन सके, जो बोल नहीं सकता मुकम करोति वाचालम पंगु लंगयते गिरम तत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, उसको बोल उसको चलाना, उसको बोलने की शक्ति दे देना, उमंग उत्साह से भर देना, जो उदास है दुखी है ब्राह्मण बन गया है परंतु अब पश्चाताप कर रहा है क्यों बन गया ब्रह्मा कुमार, मेरे दोस्त देखो कैसे घूम रहे अच्छे आराम से, कमाई भी कर रहे और हम फंस गए यहां, जो ऐसे दुखी है उनको भी तो कुछ शक्ति देनी पड़ेगी कि तुमने क्या पाया है ब्राह्मण जीवन में। और मनसा सेवा से शक्तिहीन है उसमें शक्ति भरना, बल भरना, भयभीत है उसको निर्भय बना देना, अभय वरदान दे देना, अभय दान दे देना, उसके सिर पर हाथ रखकर उसको भय से मुक्त कर देना। और मन से करना है ये सारा। संसार के वो लोग सिद्धियां करते हैं, हमारी ये सारी सिद्धियां है। जो चिंताग्रस्त है उसको चिंता मुक्त बना देना, जो अशांत है उसके शांत बना देना, जो अपवित्र है उसे पवित्र बनाना, प्यूरिटी की वाइब्रेशंस देना, प्रेरणा देना, जो भटके उन्हें ठिकाना दे देना, जो भक्त है उनको भक्ति का फल, जो सन्यासी है, जो भगवान को खोज रहे उनको भगवान तक पहुंचा देना, जो नास्तिक है उसको आस्तिक बना देना, और जो लाचार है उसको क्या कर देना, आचार खिला देना, जो निर्बल है उसको दुर्बल को शक्तिशाली बना देना, और जो निराश है, हतोत्साहित है, बिल्कुल ही इच्छा ही नहीं है जीवन की, अब बस मरने का सोच रहा है, बस जीवन को खत्म कर दूं, उसी दम तेरा वो आना ना भूल पाएंगे, गीत है ना, उसी दम तेरा वो आना ना भूल पाएंगे। एक नाटक भी तो हुआ था इधर ओम शांति भवन में, वो बहन एकदम उदास होकर आत्महत्या करने जा रही है, वो भाई उधर से आके उसको बचाता है, पीछे से गीत बजता उसी दम तेरा वो आना, ऐसे हुआ था कभी इधर। तो ये सब मनसा सेवा से होता है। अब अगला प्रश्न है, मनसा सेवा कौन कर सकता है? पांच उत्तर बाबा ने दिए, कौन कौन से आप बताएंगे? शुभ भावना, शुभ भावना। और पहला है निस्वार्थ भावना। यदि संकल्पों से सेवा करनी है तो हमारे अपने संकल्प कैसे होने चाहिए? निस्वार्थ। अगर स्वार्थ भरे संकल्प है, मेरा बेटा ज्ञान में आ जाए, मेरे पति का बुद्धि का ताला खुल जाए, मेरी बेटी सेंटर पर चली जाए, बाबा इसको जल्दी भेजो, सबकी बेटी है, पर वो नहीं कह रहे ना मेरी बेटी जाए, प्रॉब्लम ये है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, ये है, यहां पर बारिश नहीं हो रही बाबा, यहां पर बारिश आ जाए, ये भी स्वार्थ है। अब आई बारिश, अब बंद करो, दूसरा योग लगाओ बारिश कम करने को, बाबा जब तक मैं नहीं आता, मैं नहीं पहुंचू, ट्रेन जानी नहीं चाहिए, ये ठीक है, संकल्प शक्ति के प्रयोग के हिसाब से ठीक है। जैसे एक सिद्ध था, वो योग कर रहा था और अचानक समुद्र के किनारे बैठकर तपस्या कर रहा था, इतनी तेज हवा चलने लगी, तूफान आने लगा, उसने कहा मैं देखता हूं इतने समय से तपस्या कर रहा हूं, मेरी भी तो अपनी कुछ शक्ति है, हाथ किया रुक जा, और सारा तूफान हवाई रुक गई, और उस समुद्र में एक जहाज जा रहा था जिसमें 40 लोग थे, वो सब डूब के मर गए। अब पाप किस पर लगा? इसके सर पर, और पाप लगने की वजह से सिद्धियां खलास, सिद्धियां चली गई, क्योंकि पाप कर लिया ना, हवा को क्यों रोका? प्रकृति में इंटरफियर नहीं करना है। इसके लिए हमको लगता है ये बारिश आए बारिश नहीं आए, ये सब नहीं करना है, पवित्रता की किरणें प्रकृति के पांच तत्वों को देना है बस, बाकी बारिश लाना है नहीं लाना है वो प्रकृति अपना खुद सोचेगी। बाबा यहां बारिश नहीं आई, बारिश लाओ, बारिश आई, बारिश रुक ही नहीं रही है, लोग मर रहे, अब तुम्हारे सर पर बोझ है, तुमने योग लगाया था ना बारिश लाने के लिए, यज्ञ किया बारिश लाई, बारिश रही, अब यज्ञ करो बारिश रोकने के लिए। कुछ दिन पहले मुरली में था ना, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है, तब यज्ञ क्यों नहीं करते रोकने के लिए? प्रकृति में इंटरफियर नहीं करना है, प्रकृति अपना हिसाब है उसका, प्रकृति को शुद्ध बनाओ बस, अपनी प्यूरिटी की किरणें फैलाओ। बहुत धूप है बाबा छाव आ जाए, अरे छाव क्यों आ जाए? तुम अपना स्वार्थ से यह सकाश दे रहे मांग रहे हो, ये तो स्वार्थ हुआ। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या है सकाश गिवर में? जो सकाश देने वाला है, मनसा सेवा करने वाला, वो निस्वार्थ होना चाहिए। जो कुछ कहो वो इतना निस्वार्थ हो, वैश्विक हो, सार्वभौम हो, यूनिवर्सल हो, सबके लिए हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका कल्याण जिसमें हो, मेरा अपना कल्याण नहीं, सबका कल्याण उसमें समाया हुआ हो, और सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण है वास्तव में। तो ये सबसे पहली क्वालिफिकेशन। दूसरा वो रहमदिल होना चाहिए, वो परोपकारी होना चाहिए, रहमदिल होना चाहिए, उसके हृदय में रहम हो सबके प्रति। लोग इतने तड़प रहे, इतने दुखी है आत्माएं, हरेक को कुछ ना कुछ देना है, जिसको जो चाहिए, जो जो लोजे वांछिल तोते लाहो प्राणी जात, ऐसी भावना है कि जिसको जो शुभ कामना है वो पूरी हो, तो उसके अंदर क्या हो, रहम। जैसे भगवान रहम दिल है, जैसे उसने हम पर रहम किया है, हमको भी सब पर रहम करना है। ये एक कारण है रहम करने का। क्यों रहम करना है? क्योंकि उसने हम पर रहम किया ना, हमने इतनी गलतियां की फिर भी उसने रहम किया। दूसरों की गलतियां करते तो हम चाहते उसकी गलतियों को उजागर करते दुनिया के सामने, हाँ मैं तो चला तो ये ना हो। जैसे वो रहम दिल है, हम भी रहम दिल। एक इंग्लिश कवि ने लिखा है, भोजन के लिए लिखा है, नॉनवेज फूड के लिए, नो फ्लॉक दैट रेंज दिस वैली टू स्लॉटर आई कंडेम, टॉट बाय द पावर दैट पिटीज मी आई लर्न टू पिटी देम। वो लिखता है, नो फ्लॉक दैट रेंज दिस वैली टू स्लॉटर आई कंडेम। इस वादियों में, इस पहाड़ियों में जो भेड़ चर रही है, उनको मारना मेरे, मैं इससे घृणा नहीं करता, मैं मार सकता हूं उनको। नो फ्लॉक, फ्लॉक अर्थात भेड़ियों का झुंड, दैट रेंज, रेंज मतलब भटक रही है जो भेड़ इस वादी में, आई कंडेम, मैं कंडेम नहीं करता हूं, मैं मार सकता हूं, बट टॉट बाय द पावर दैट पिटीज, पर मेरे ऊपर एक दूसरी शक्ति है जो मुझ पर रहम करती है, इसलिए मैं उन पर रहम करता हूं। तो जैसे उसने हम पर रहम किया है, हमें उन पर भी रहम करना है। तो दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? रहम दिल। तीसरा क्वालिफिकेशन दाता। क्या होना चाहिए? वो दाता होना चाहिए, देने की भावना होनी चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए, दे दो जो है तुम्हारे पास दे दो। चौथा, चौथा अपने श्रेष्ठ कर्मों से दूसरों को प्रेरणा दे। ये नहीं कि वो करे तो मैं करूं, उनके करने के बाद मैं करूं, वो करे ना करे मुझे अवश्य करना है, मुझे करना है। ये है चौथा। और पांचवा, अपकारी पर भी उपकार। जो अपकारी है, अपकार अर्थात, अपकार शब्द का अर्थ क्या है? जो मेरी निंदा करते हैं, बुरा करते हैं, अपकार करते हैं, बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, टांग खींचते हैं, उसे कहा जाता है अपकार। तो ऐसे जो है, ये तो बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है ये। ऐसे जो करने वाले हैं, उनको ही, उनका, उनको आगे बढ़ाना, उनका ही उपकार करना, उनकी ही मदद करना, बहुत बहुत बड़ा काम है, बहुत मतलब बहुत बड़ा काम। वो भी दिल से करना। पहले तो उनके प्रति इतनी नफरत है हमारे अंदर कि उन्होंने मेरे साथ ये किया और मैं उनके साथ अच्छा करूं। सब कुछ चाहिए यहां, सहन शक्ति, सारा ज्ञान योग दांव पे लगाना होता है यहां जो अब तक सीखा, सुना, सेवा किया, सब कुछ, अपना अहम, सब कुछ, सारा कुछ बाजू में रख के किसी को माफ कर देना बहुत ही बड़ी बात है। केवल माफ नहीं, उनसे ये नहीं कहना कि ये भी नहीं। जैसे राम कई कई से क्या कहता है, कई कई कहते हैं मुझे डांटो तो सही, कम से कम कुछ तो बोलो, तुम ये भी नहीं कहते हो कि तुम्हारी वजह से हुआ। राम उसको कुछ दोषी मानने कोई तैयार नहीं है इसलिए तो ज्यादा दुखी है कई कई। कम से कम मुझे दोषी तो मानो, मेरी वजह से हुआ, तुम इतना कह दे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं और पश्चाताप करूंगी। पर वो कहता है तुम्हारा कोई दोषी नहीं है। कितना ड्रामा पे पक्का है राम ड्रामा का हर एक्टर एक्यूरेट है। देखो तब ड्रामा का ज्ञान भी नहीं था, पर राम जी तो बहुत ही एकदम मास्टर है बिल्कुल। इस ज्ञान में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण की परिभाषा है वो रामायण का राम है, ये कृष्ण नहीं है, ये तो बहुत चालबाज है। कृष्ण तो बहुत षड्यंत्र करिए, एकदम भयंकर पॉलिटिशियन है, ये राम जी एकदम सिंपल वो बाबा भगवान की जो परिभाषा है ना, वही राम, राम है वो। नहीं रोता कहाँ है, वो रोता तो नहीं, पर वो एक आइडियल ह्यूमन बीइंग है, एक आइडियल, क्रोध नहीं करता है वो। वो लक्ष्मण को हर बात में क्रोध आता है, राम जी को कभी नहीं आता है। जल सम वचन बोले रघुनाथा, उसके वचन जल के समान है। कोमल चित अति दीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। वो बिना कारण के कृपा करता है, कॉजलेस मर्सी है उसकी। इसलिए नहीं कि तुमने मेरी पूजा की इसलिए तुम पर कृपा करूं, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। तो ऐसा है वो। तो ये पांच क्वालिफिकेशंस है। उसके बाद में लास्ट एक प्रश्न है कि मनसा सेवा कहां बैठकर करनी है। बाबा ने कहा कहीं पर भी बैठकर कर सकते हो, कहां कहां कर सकते हो, यह भी किसी का प्रश्न था ना। यहां पे सीरीज हुई है हमारी, एक तो सूक्ष्म वतन में करो, परमधाम में बैठ के करो, धरती पर बैठ के करो, ग्लोब के ऊपर बैठ के करो, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के करो, या आकाश में ऊपर करो, या उन आत्माओं को अपने पास बुलाओ, या हम उनके पास जाए, लाइट हाउस बन के करो, या शांति स्तंभ बनकर करो, या मधुमन में आकर करो, या फिर पहाड़ पर बैठ के करो, शांति शिखर, कहीं पर भी अलग अलग जगह जाकर सूक्ष्म मनसा सेवा करनी है। तो और कुछ था मुरली में, और फिर वो ये था सम्मेलन वालों से, नहीं कुमार का कर लेंगे सेकंड पार्ट। एक दूसरा और था कि विदाई के समय अमृत वेला हो गया, बाबा ने कहा हर दिन मंगलम, मुबारक, हर दिन मंगल हो, हर दिन शुभ हो, हर दिन श्रेष्ठ हो, और ये समझो सारे दिन भर बाबा का याद प्यार लेना है, एक ही सुबह नहीं केवल सारे दिन भर। ये बहुत अच्छी वाली बात कही है बाबा ने कि सुबह सुबह का संकल्प शक्तिशाली हो, मंगलमय हो, श्रेष्ठ हो, शुभ हो, तो सारा दिन भी वैसा ही होगा। तो ये कल की जो व्यक्तवाणी थी, इसका जो दूसरा भाग है ब्रह्मा कुमार से मुलाकात, वो कल लेंगे। ओम शांति। तो और एक लास्ट चीज, इसलिए भक्ति मार्ग में क्या गायन करते हैं, हमको मन की शक्ति देना। क्यों देना? क्योंकि मन को विजयी करना है। दूसरों की जय से पहले क्या करो, खुद ही को जय करो। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रखे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन शक्तिशाली हो जाए, जीवन शक्तिशाली हो जाएगा। ओम शांति।